पहले मुख्य समाचार। सरकार ने राज्य के सार्वजनिक निकायों और उपक्रमों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति दी। प्रदेश में पीएम श्री विद्यालयों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने कहा, चारधाम यात्रा संचालन का निर्णय मौसम ठीक होने के बाद लिया जाएगा और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशा भट्ट और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में सार्वजनिक निकायों और उपक्रमों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति दी है। 5वें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 455% से बढ़ाकर 466% और 6वें वेतनमान वाले कर्मचारियों का भत्ता 246% से बढ़ाकर 252% कर दिया गया है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। शासन ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसमें पिथौरागढ़ जिला कारागार में अतिरिक्त आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए से अधिक, जबकि रुड़की उप कारागार में नवीन आवासीय भवनों के लिए 2.5 करोड़ रुपए की मंजूरी शामिल है। वहीं धारचूला विधानसभा क्षेत्र के रालम के अंतर्गत किलातम में चेकडैम निर्माण के लिए 95 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसमें प्रथम किश्त के रूप में 57 लाख रुपए जारी किए गए हैं। चंपावत विधानसभा क्षेत्र में हनुमान मंदिर मेला स्थल लधौली, एड़ी मेला स्थल कालूखान और फुटलिंग कालूखान के सौंदर्यीकरण के लिए 81 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए पहली किश्त के रूप में लगभग 49 लाख रुपए जारी किए गए हैं। प्रदेश में पीएम श्री विद्यालयों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता वाली ये समिति निर्माण और खरीद फरोख्त की निगरानी करेगी। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के निर्माण और मरम्मत के लिए राज्य सरकार ने आपदा मोचन निधि से 20 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिला शिक्षा समिति की अध्यक्षता में प्रस्ताव शीघ्र भेजकर निर्माण कार्य पूरे कराए जाएं। डॉ. रावत ने कहा कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्वीकृत राशि 15 सितंबर तक डीबीटी के माध्यम से छात्रों के खाते में स्कूल बैग, जूते, ड्रेस और साइकिल की खरीद के लिए अनिवार्य रूप से भेजी जाए। उन्होंने अधिकारियों को आवासीय स्कूलों, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय और अन्य संस्थानों का नियमित निरीक्षण कर भोजन, साफ सफाई और आवासीय व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। राज्य महिला आयोग ने एक निजी सर्वे कंपनी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में देहरादून को देश के 10 असुरक्षित शहरों में शामिल किए जाने पर स्पष्टीकरण दिया है कि ये सर्वे न तो राष्ट्रीय महिला आयोग और न ही किसी सरकारी संस्था द्वारा कराया गया है। ये पूरी तरह से निजी कंपनी का स्वतंत्र कार्य है।
31 शहरों में टेलीफोनिक बातचीत पर आधारित है। देहरादून की करीब 9 लाख महिला आबादी के मुकाबले केवल 400 महिलाओं से प्राप्त राय के आधार पर इस रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया। आयोग ने कहा कि यह सर्वे वास्तविक आंकड़ों पर आधारित नहीं है। आयोग ने स्पष्ट किया कि तथ्यों के अनुसार देहरादून में गौरा शक्ति ऐप पर 1.25 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिनमें 16,649 केवल देहरादून से हैं। डायल 112, पुलिस ऐप, सीएम हेल्पलाइन और सिटीजन पोर्टल का महिलाएं नियमित उपयोग कर रही हैं। अगस्त माह में 12,354 शिकायतों में से केवल 11 छेड़छाड़ से संबंधित थी। पुलिस का औसत रिस्पॉन्स टाइम 13.33 मिनट दर्ज किया गया। देहरादून में महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, SOS बटन, वन स्टॉप सेंटर, गौरा चीता गाड़ियां, पिंक बूथ और एकीकृत CCTV सिस्टम जैसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। शहर में लगभग 14,000 CCTV कैमरे निगरानी के लिए लगाए गए हैं। आयोग ने कहा कि सर्वे में सैंपल साइज, प्रतिभागियों की पहचान और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा गया। देहरादून का NCRB डेटा दर्शाता है कि यहां अपराध दर मेट्रो शहरों से कम है। यही कारण है कि शहर में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और पर्यटक सुरक्षित वातावरण में रहकर शिक्षा व पर्यटन का आनंद लेते हैं। आयोग ने कहा कि नीतिगत निर्णयों के लिए मजबूत पद्धति पर आधारित सर्वे आवश्यक है, जबकि यह रिपोर्ट केवल धारणाओं पर आधारित है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा है कि चारधाम यात्रा संचालन का निर्णय मौसम ठीक होने के बाद लिया जाएगा। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए चारधाम यात्रा पर 5 सितंबर तक रोक लगा दी गई है। आयुक्त ने बताया कि गढ़वाल मंडल के सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं और आपदा के समय फोन नहीं उठाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यात्रा को भी हमने 5 सितंबर तक स्थगित किया है और सभी एंट्री पॉइंट्स जो चारधाम रूट के हैं उन पर किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई बीच में यात्री है तो उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि उनके ठहरने का, भोजन का, बच्चे हैं तो उनके दूध का, इन सारी चीजों का प्रबंध किया जाए।
उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में हो रही लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में जलभराव होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधमसिंह नगर और बागेश्वर में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के अन्य जिलों में भी गरज के साथ वर्षा का येलो अलर्ट है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल और चंपावत जिलों में आज स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी बारिश से प्रभावित हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र का ट्रैक्टर से दौरा कर आपदा प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी और जिला प्रशासन को राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत शिविरों में भोजन, पानी, दवाइयों और साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने, जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने, किसानों की फसल क्षति का त्वरित आकलन कर मुआवजा प्रक्रिया शुरू करने और आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन प्रशासन स्तर पर सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ताकि प्रभावित लोगों को राहत मिल सके।
बच्चों के साथ हम लोग हैं, ऐसे समय में हमारे बच्चों का स्कूल जाना आना ये भी आगे चलकर सुचारू रूप से हो, उसके लिए मैंने वहां पर कहा है कि निकट भविष्य में सड़क ऊंची बनाई जाएगी और साथ ही हर वर्ष इस प्रकार की समस्या है, विस्थापन इत्यादि के लोगों ने कहा है। नहीं, पूरे राज्य के अंदर इस वर्ष बहुत आपदा है। थराली हमारा जखोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी सभी जनपदों में लगभग और मैदानी क्षेत्रों में जल भराव है। उधमसिंह नगर में, उधर चंपावत के मैदानी क्षेत्रों में, तो सभी जगह पर हम प्रशासन हमारा अलर्ट है, 24 घंटे जो है अलर्ट मोड में रहकर सभी के साथ समन्वय बना के काम कर रहा है।
और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला प्रधानमंत्री के हवाले से लिखता है, भारत के नवाचार और युवा शक्ति में दुनिया को विश्वास। हिंदुस्तान समाचार पत्र का शीर्षक है, देश की पहली स्वदेशी चिप बनकर हुई तैयार। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, बारिश से 486 सड़कें बंद, दो बहे। दैनिक जागरण का शीर्षक है, झमाझम बरसात के बीच यमुनोत्री में हिमपात। अमर उजाला लिखता है, आज भी बारिश होगी, कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी। केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की कंपनी और पर्यटन विभाग में समझौता हुआ है। इसी खबर पर नवोदय टाइम्स लिखता है, केदारनाथ होम हेमकुंड रोपवे निर्माण का रास्ता प्रशस्त। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने राज्य के सार्वजनिक निकायों और उपक्रमों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति दी। प्रदेश में पीएम श्री विद्यालयों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा, चारधाम यात्रा संचालन का निर्णय मौसम ठीक होने के बाद लिया जाएगा और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।